स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 23 दिसंबर और दिन सोमवार। झारखंड में बीजेपी को झटका, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत।
मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है, इस राज्य की जनता का, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह।
अब जमी का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। मेरा ईमान है यही तारीख, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे।
लेकिन नागरिकता कानून के समर्थन में कोलकाता की सड़कों पर उतरी बीजेपी।
सारे बंगाल ने CAA का, सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन किया है और खुशी जाहिर की है, इजहार की है।
और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। आज झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की गई, जिसमें बीजेपी हार गई है और कांग्रेस जेएमएम राजद के गठबंधन को बहुमत मिला है। सऊदी अरब की एक अदालत ने पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के मामले में 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। सऊदी अरब के सरकारी अभियोजक के मुताबिक ये 5 लोग सीधे तौर पर हत्या में शामिल थे, साथ ही 3 अन्य लोगों को भी जेल की सजा सुनाई गई है, जिन्हें जुर्म को छिपाने का दोषी पाया गया। हालांकि इस मामले में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकार समेत कई प्रमुख अधिकारियों के भी नाम थे, जिन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है। कुर्द और पश्चिमी खुफिया अधिकारियों ने बीबीसी से कहा कि इस्लामिक स्टेट समूह इराक में फिर पैर पसार रहा है और जिहादियों के हमले बढ़ने लगे हैं। आईएस को इराक में 2 साल पहले हरा दिया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि वहां अब भी समूह के हजारों लड़ाके मौजूद हैं। चरमपंथ विरोधी एक शीर्ष कुर्द अधिकारी ने कहा, उनके पास तकनीक है, उनके पास रणनीति है और उनके पास बहुत पैसा भी है। मुझे नहीं पता कि ये वही पैसा है जो उन्होंने तब तेल व्यापार से बचाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना पैसा अलकायदा के पास था, इनके पास उससे कहीं ज्यादा है। ये थे एक शीर्ष कुर्द अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन ने घोषणा की है कि अगले साल की शुरुआत में वो 850 उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर देगा। उम्मीद की जा रही है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैलने के बाद चीन के इस कदम से सुअर के मांस की कीमतें कम हो जाएंगी। ये घोषणा उस वक्त की गई जब चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के नेता व्यापार सहयोग समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर बात कर रहे थे। इस मौके पर चीन के वाणिज्य मंत्री जोंग शान ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है और एक तरफा बात जोर पकड़ रहा है। हम दुनिया की सबसे अहम अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। एक दूसरे के साथ व्यापार और निवेश की संभावनाओं को और बढ़ाकर हम दुनिया की स्थिरता में अपनी भागीदारी दे सकेंगे। ये थे चीन के वाणिज्य मंत्री जोंग शान। रूस के अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद जर्मनी के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को पूरा किया जाएगा। इस योजना के अगले साल की शुरुआत में पूरा होने की संभावना थी, लेकिन पाइप लगाने का काम कर रही स्विस कंपनी ने काम बंद कर दिया। अल्जीरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के सेना प्रमुख अहमद गेत सालाह का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। वो 69 साल के थे। उनकी वजह से राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बूटफलीका को इस साल इस्तीफा देना पड़ा था, जो बड़े प्रदर्शनों के बाद लोगों की नाराजगी झेल रहे थे। फिलीपींस के प्रशासक के मुताबिक अवैध कोकोनट वाइन पीने के बाद 8 लोगों की मौत हो गई है और 300 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि उस कोकोनट वाइन में मेथनॉल की मात्रा अधिक थी। जाम्बिया में विपक्षी नेताओं ने एक प्रमुख संगीतकार और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की निंदा की है। पुलिस के मुताबिक चामा फुम्बा को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, जहां वो एक अवैध रैली को संबोधित कर रहे थे। कहा जा रहा है कि उन्हें 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। इस तारीख और दिन है सोमवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे से। झारखंड में बीजेपी को झटका लगा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है। हालांकि अभी आधिकारिक नतीजों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 81 सीटों की विधानसभा में जेएमएम गठबंधन को 45 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 25-26 सीटों के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अब की बार 65 के पार के नारे के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन उसे भारी झटका लगा है। जीत के बाद गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सभी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेगी। रांची से सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
यह आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की आवाज पर बज रहे पटाखों की है। आज सुबह से ही विभिन्न रुझानों में उनकी पार्टी बेहतर परफॉर्म करती दिखने लगी थी। इसके बाद कई बार ऐसे भी मौके आए जब सीटें इतनी ऊपर नीचे हुई कि मानो किसी की जीत या हार का आकलन कर पाना कठिन हो गया हो। इसके बावजूद हेमंत सोरेन कॉन्फिडेंट रहे और शाम 4:30 बजे जब वे मीडिया से रूबरू हुए, तब तक उनका गठबंधन राज्य की कुल 81 में से 47 सीटों पर आगे चल रहा था और उनकी पार्टी अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर थी। तब पटाखों की आवाज़ और झारखंड जिंदाबाद के नारों के बीच उन्होंने कहा कि झारखंड का भविष्य यहाँ की जनता के मुताबिक ही तय किया जा सकता है। हेमंत सोरेन ने कहा,
कई मतदाता हमारे झारखंड के लोगों के लिए उत्साह का दिन तो है ही, लेकिन मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है। इस राज्य की जनता का, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है और आज का ये जनादेश मुझे लगता है आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है। जिस उद्देश्य के लिए ये राज लिया गया था, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने का वक्त आ गया है।
उसी वक्त मुख्यमंत्री रघुवर दास भी भाजपा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि उन्हें यह जनादेश स्वीकार है, लेकिन उन्हें तब हार नहीं मानी और यह कहा कि सारे परिणाम आने के बाद ही वे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। रघुवर दास ने कहा,
राज्य की जनता की सेवा करने की कोशिश की और जो विकास, जो अलग राज्य गठन के बाद जो विकास की गंगा गाँव गाँव में घर घर तक पहुँचे, ये हमारी सरकार ने पूरी प्रयास की। फिर भी राज्य की जनता का जो जनादेश है, जो रुझान आ रहा है अभी, क्योंकि अभी पूरी चुनाव का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया, फिर भी जो रुझान है उसका मैं स्वागत करता हूँ और जब पूरी रुझान आ जाएगी तब मैं आप सबसे फिर मिलूँगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है तो अभी तक स्पष्ट, क्योंकि आप देख रहे हो 19-20 हो रहे हैं, इसलिए सारे रिजल्ट आने के बाद ही मैं इस पे आप सबसे विस्तार से आपसे फिर बात करूंगा।
रांची के कांके रोड पर हेमंत सोरेन और रघुवर दास के सरकारी आवास अगल बगल में हैं। इसके बावजूद उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। अब यह देखना होगा कि सारे परिणाम आ जाने के बाद रघुवर दास क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इधर हेमंत सोरेन के आवास पर बज रहे पटाखों की गूंज यह मुनादी कर रही है कि झारखंड की सत्ता इस युवा नेता के हाथों में मिलने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब चलते हैं रांची। इस वक्त हमारे साथी सलमान रावी मौजूद हैं राजभवन के पास। सलमान, क्या रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया जाकर राज्यपाल महोदय को?
जी, अभी अभी बस उनका जो काफला है वो गया है राजभवन के अंदर, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं। या वैसे तो हमें कहा गया राजभवन के सूत्रों से कि ये सिर्फ मुलाकात का टाइम लिया था इस्तीफा देने का नहीं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस्तीफा सौंप भी सकते हैं, क्योंकि अब तो पूरा साफ हो गया है मामला, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, क्योंकि परिणाम भी स्पष्ट हैं, सब सामने आ चुका है और काफी नुकसान हुआ है बीजेपी।
तो सलमान, चूंकि आप झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी के खिलाफ क्या बातें हुई तो आप क्या कहेंगे? क्यों उनको इतनी बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा जो 65 के पार की का दावा कर रहे थे?
जी देखिए, 65 के पार का दावा 30 के पार भी नहीं हो पाया। उसका कारण था सबसे बड़ा, जो जिस मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहा दिन भर और कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उनका बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था, किसी को भी ये अफसोस नहीं हो रहा था कि सीटें कम आ रही हैं या हार रहे हैं, और बड़े बड़े दिग्गज निपट गए भारतीय जनता पार्टी के, जैसे लक्ष्मण गिलुआ हैं जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो हार गए, कई मंत्री वो हार गए, रघुवर दास खुद की हालत खराब कर दी, सरजू राय ने जो पार्टी में कैबिनेट के मंत्री थे उनके साथ कैबिनेट में, तो अब ये हालत रही है कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये नेताओं की हार हुई है, कार्यकर्ताओं की नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा था कि उनकी अनदेखी हुई है, और अंदर अंदर उनके एक आक्रोश भी जो है वो था कि पूछा नहीं संगठन ने, और टिकट बंटवारे को भी लेकर, क्योंकि ऐसा लगता है बातों से कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव के पूर्व कोई अलायंस नहीं किया, खुद 81 सीटों पर लड़ने का मन बनाया, और बहुत इसमें काफी अपनी ताकत झोंकी थी भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 सभाएं सिर्फ अमित शाह जी की हुई हैं झारखंड में, जबकि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी 9 सभाएं, और मुख्यमंत्री ने खुद लगभग 50 से के आसपास सभाएं की हैं, चुनावी सभाएं घूम घूम कर विभिन्न इलाकों में। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन एक दो चीजें जो सामने आई हैं वो ये कि जो नेता भाषण दे रहे थे, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी आए थे कैंपेनिंग में, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो झारखंड की जनता के गले के नीचे नहीं गए, क्योंकि वो क्षेत्रीय मुद्दे इतने सारे थे यहाँ पर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, ये राज्य को लिंचिंग के लिए भी जाना जाता है, भूख से मौतों के लिए जाना जाता है, प्लस इसके साथ साथ बहाली आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हैं वो पिछले 5 सालों से हुई नहीं है,
जी
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसलिए आक्रोश युवाओं में भी था और इसके साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी था, सबसे बड़ी बात है।
बहुत शुक्रिया सलमान आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट की। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज भी भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली स्थित यूपी भवन में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी में अब तक 15 से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं, और लोगों का कहना है कि पुलिस उनके घरों में घुस कर उनको किसी तरह से प्रताड़ित कर रही है। इसी के विरोध में लोगों ने यूपी भवन में आज प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस ने आज राजघाट पर सत्याग्रह किया। इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, महासचिव प्रियंका गांधी, कई राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। इस बारे में और जानकारी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा से।
जी देखिए, यहाँ पे इसका जो एक धरना की तरह है, लेकिन इसका जो कांग्रेस है उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया है इस कार्यक्रम का। उनका ये कहना है कि ये बेसिकली जितनी भी नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, जो नागरिकता संशोधन बिल है, कानून है, चाहे वो बाकी नीतियां हैं, उन सबको लेके कि वो उनका कांग्रेस ये कह रही है कि जो नीतियां हैं ये बड़ी नुकसानदायक हैं देश के लिए, देश का विभाजन कर रही हैं, ये सारी इस तरह की चीजें बात करते हुए इन्होंने इस सत्याग्रह का नाम रखा है, जिसपे बड़े बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी यहाँ पे मौजूद रही है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रहे हैं, और सोनिया गांधी का जो है और बाकी जो नेता उन्होंने प्रियम्बल भी है जो वो पढ़ के सुनाया, जैसे कि प्रियंका गांधी ने भी जो प्रियम्बल पढ़ के सुनाया यहाँ पर और लोगों को शपथ दिलाई।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इति द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।
काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग थे, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो दूर दूर से आ रखे थे हमारी यहाँ मुलाकात हुई, जो पंजाब और हरियाणा और अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग पहुंचे थे, काफी उत्साहित नजर आए लोग। उनका ये कहना है कि जो नीतियां हैं बिल्कुल जो देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी है। कुछ यहाँ पे हमने कांग्रेस के वर्कर से भी बात की।
ये जो एनआरसी और एससीए मुद्दा है, ये जनता को भड़काने के लिए मुद्दा है, विकास से हटकर मुद्दा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिख रही जो हमारे हित के लिए हो, बल्कि ये एक भाईचारा जो बना हुआ हिंदुस्तान का, मजहबी तहजीब बनी हुई है, एक गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है, उसको भटकाने का मुद्दा है। सिवा इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये एक साजिश है और साजिश के तहत ये चाल चल रही है जो कि विफल होगी। और आज की रैली, कांग्रेस की रैली ये बता देना चाहती है कि पूरी जनता कांग्रेस के साथ है। आने वाला वक्त, आने वाला पल, अब जमी का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। मेरा ईमान है यही तारीख, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे।
तो ये जो कार्यक्रम था, ये लगभग 3 बजे शुरू हो गया था, और जो समय जो दिया गया है पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, वो ये है कि 8 बजे तक चलेगा।
ये थे अरविंद छाबड़ा। उधर कोलकाता में बीजेपी इस कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरी। उसका नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल इस बिल के समर्थन में है और मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए हमने बात की पीएम तिवारी से।
रैली में काफी भीड़ थी, केंद्रीय कलकत्ता में सुबोध मल्लिक स्क्वायर से और उत्तर कलकत्ता श्याम बाजार चौराहे तक रैली निकली, कोई 5 किलोमीटर लंबी रही और हजारों की तादाद में हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोग, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक इसमें शामिल हुए, जिनमें कहा गया था कि सीएए जरूरी है और सीएए लागू करना होगा और होगा, केंद्र सरकार सीएए और एनआरसी लागू करने के लिए संकल्प है। और उसके बाद रैली जहाँ खत्म हुई वहाँ एक सभा हुई और जिसे जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय नेता जो है कैलाश विजयवर्गीय और पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और दूसरे नेताओं ने संबोधित किया। तो जेपी नड्डा इस रैली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ममता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, यहाँ इतनी भीड़ जुटी है इससे साफ है कि लोग सीएए के समर्थन में हैं और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया है।
सारे बंगाल ने सीएए का, सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन किया है और खुशी जाहिर की है, इजहार की है। ये जन सैलाब बता रहा है कि सारे पश्चिम बंगाल से लोग आकर आज कलकत्ता में अब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए बता रहे हैं कि सेंट्रल सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट जो एक्ट पास हुआ है उसका समर्थन कर रहे हैं।
प्रभाकर जी, ये बताएं कि उन्होंने कई एक जातियों का भी नाम लिया और ये कहा कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं तृणमूल की ममता बैनर्जी, वो नहीं चाहती हैं कि इन जातियों को भारत की नागरिकता मिले। इसके जरिए आखिर नड्डा क्या इशारा करना चाह रहे हैं?
हाँ, दरअसल अब बीजेपी और नड्डा हिंदू नब्ज और हिंदू कार्ड खेल रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए।
ममता जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, ममता जी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, छोटे इरादे को लेकर के चली है। वो नहीं चाहती कि मतुआ समाज, जो दलित समाज है, राजवंशी समाज और जो हमारा नमो शूद्र समाज है, जो बांग्लादेश से आया है, जिनको प्रताड़ना हुई है, जिनको हर तरीके की मुसीबत झेलनी पड़ी है, आज उनको नागरिकता का पूरा अधिकार नहीं है। उनको मोदी जी ने नागरिकता का पूरा अधिकार दिया है।
ममता पर तो अल्पसंख्यक राजनीति और अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के आरोप तो बीजेपी के नेता लगाते ही रहे हैं शुरू से, और अब उन्होंने जो खासकर देश के विभाजन के बाद और बांग्लादेश बनने से पहले जो लोग आए थे सीमा पार करके, उनमें नमो शूद्रो थे और भी कई जातियां थी जो सीमावर्ती इलाकों में अब भी रहते हैं, उनको तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने बसाया था। तो अब बीजेपी उनमें घुसपैठ की कोशिश कर रही है, जैसे मतुआ समुदाय के लोग हैं जो कम से कम 2 दर्जन सीटों पर निर्णायक हैं।
तो ये थे पीएम तिवारी। और कलकत्ता की सड़कों पर सीएए के समर्थन में उतरी बीजेपी। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। सऊदी अरब की एक अदालत ने पत्रकार जमाल खशोजी की हत्या के मामले में 5 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है। सोमवार को सऊदी अरब के सरकारी अभियोजक शलान अल शलान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा,
अस्दरत अल महकमा अल जज़ाइया बिर रियाद احکاما ابتدائیہ بحق 11 من المدعى
ریاض کی عدالت نے 11 ابھیوکتوں کو سزا سنائی ہے۔ 5 لوگوں کو سیدھے طور پر ہتیا کا دوشی پایا گیا ہے اور اس لیے انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 3 لوگوں کو اس اپرادھ کو چھپانے کا دوشی پایا گیا ہے اور انہیں الگ الگ کئی سالوں تک جیل کی سزا سنائی گئی ہے، جو کہ جوڑ کر 24 سال کی سزا ہو جائے گی۔ جمال خشوجی کو آخری بار 2 اکتوبر 2018 کو ترکی کے استنبول استھت سعودی وانجک دوتاواس کے باہر دیکھا گیا تھا۔ ترکی نے سعودی عرب پر آروپ لگایا تھا کہ دوتاواس میں جمال خشوجی کی ہتیا کر دی گئی تھی، لیکن ان کی لاش کہیں نہیں ملی۔ ترکی کا آروپ تھا کہ سعودی اعلیٰ ادھیکاریوں کے آدیش پر خشوجی کی ہتیا کی گئی ہے، حالانکہ سعودی عرب اس سے انکار کرتا رہا ہے اور آج بھی جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پورو نیوجت ہتیا نہیں تھی اور جو کچھ ہوا وہ ایک چھن بھر میں ہو گیا ہے۔ حالانکہ جو یو این کی وشیش کمیٹی ہے ان کی جانچ رپورٹ کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سوچی سازی اور سازش کے تحت کی گئی ہتیا تھی۔ بہرحال اب وقت ہو چلا ہے آپ کی چٹھیوں کے جواب دینے کا۔
آپ کی رائے۔ نمسکار، آپ کی چٹھیوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں میں ہوں راجیش پریادرشی اور میرے ساتھ ہیں
سشیلا سنگھ۔ راجیش جی، بہت ساری ای میلز ہیں میرے پاس اور پہلا ای میل ہے گنیش پرساد ہجدر کا۔ یہ لکھتے ہیں کہ ریحان فضل دوارا پرستت ویویچنا میں جنرل سگت سنگھ کے بہادر کارنامے کے بارے میں تفصیل سے سن کر بہت اچھا لگا۔ اسی طرح وسط اللہ خان نے اپنی ڈائری میں چین نہیں اور کوئی حل نہیں شیرشک پر بھارت اور پاکستان کے حالات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پرستتی کے لیے بی بی سی کی پوری ٹیم کو بہت بہت دھنیواد۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ای میل لینا چاہوں گی مدن لال لمبوریا کا بھیرانی سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ فیصل علی کی جنتر منتر سے تو پرینکا دوبے کی اسم سے رپورٹ بہت اچھی لگی۔ ساتھ ہی آگے لکھتے ہیں کہ بی بی سی لیڈی ڈائمنڈ، بتائیے کون ہو سکتی ہے؟
آپ تو نہیں ہے کہیں؟
نہیں، میں تو آج کل آتی ہی نہیں ریڈیو پہ، آپ بتائیے سوچ کے جلدی سے، سمے نہیں آپ کے پاس۔
مانسی،
آپ نے بالکل صحیح کہا، بی بی سی لیڈی ڈائمنڈ مانسی داس کی ناگرکتا ودھیک اور پرنو مکھرجی کے لوک سبھا پرسیمن سجھاؤ پر رپورٹ بہت تارکک، سہج اور گیان وردھک تھی۔ بی بی سی کیندر سرکار دوارا سنسد میں پرستت اور پارت ہر بل کے بارے میں صرف اور صرف نکاراتمک بات چیت و چرچا پرستت کرتا ہے، ایسا کیوں؟ ساتھ ہی یہ لکھتے ہیں کہ جامعہ ملیہ وشودیالیہ کی کوریج رپورٹ میں آپ نے ایک طرفہ رپورٹ کی کہ اتنے ودیارتھیوں میں کیا کوئی بھی اس ودھیک کے پکش میں نہیں تھا؟ ایسا سمبھو نہیں، کیونکہ ایک گھر کے گنے چنے سدسیوں میں ایک رائے نہیں ہوتی، پھر یہاں تو چھاتروں کی فوج ہے۔ آپ وسط اللہ خان کی پاکستان ڈائری سے سیکھے، وہ سنتلت روپ سے گاگر میں ساگر بھر دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے راجیش جی؟
بہت شکریہ آپ کا، لیکن جو جامعہ میں اس وقت پردرشن ہو رہے ہیں اس میں ہم نے ہر طرح کے چھاتروں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر چھاتر جو ہیں وہ اس کا ورودھ کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے، سمبھو ہے کہ کچھ چھاتر ہوں جو اس سے سہمت ہوں، لیکن جو وہاں ماحول تھا شاید وہ کھل کر اپنی بات کہنے کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے وہ بات اب تک نہیں پہنچ سکی۔
جی، یہ ہمارے بہت پرانے شروتا ہیں اور ان کا نام ہے جنگ بہادر سنگھ۔ یہ گول پہاڑی جمشید پور سے لکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سگت سنگھ کے بہادری جاں بازی کی کتھا مجھے معلوم ہی نہیں چلتی اگر ریحان فضل سر دنانگ 20 دسمبر کو ان پر ویویچنا پرستت نہ کرتے۔ تھل سینا کے ہوتے ہوئے بھی ایئر فورس کا آپریشن میں وہ مہارت رکھتے تھے۔ گوا کو بھارت میں ملانا، ناتھولا میں چینیوں سے ٹکرانا، میگھنا ندی کو پار کرنا، شاید ہی کسی سینیہ افسر اپنے ایک سروس کال میں اتنے سارے کام کو انجام دے۔ ایسے نربھک اور نڈر سینک کو ان کے کاریوں کا اچت سمان سچ مچ ہی نہیں دیا گیا، نہ ہی انہیں پروموشن کے قابل سمجھا گیا۔ اس ویر بہادر اور دیش کے سچے سپوت کو ہمارا سیلیوٹ، ریحان سر کو سادھواد۔
بہت شکریہ جنگ بہادر جی، یہ بات آپ کی سچ ہے کہ جنرل سگت سنگھ کی جو بہادری کے اتنے سارے کارنامے ہیں اس کے باوجود ان کا نام اس طرح نہیں ہے جیسا باقی اور لوگوں کا، اور یہی اس ویویچنا کی خاصیت تھی کہ ریحان کو یہ لگا کہ اس کو لوگوں تک ضرور پہنچایا جانا چاہیے تاکہ ان کو لوگ پہچان سکیں، ان کو جان سکیں۔
और एक और ईमेल है, उन्होंने भी जो विवेचना प्रस्तुत की थी रेहान फजल ने जनरल सगत सिंह के ऊपर, उसकी तारीफ की है और इन्होंने लिखा है कि ये मेरी पहली चिट्ठी है, देवेंद्र सिंह इनका नाम है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इन्होंने हमें जो चिट्ठी लिखी। अगली चिट्ठी जो है मेरे पास
डाक से आई है
और ये है अशोक कुमार ठाकुर, ग्राम मालीटोल अदलपुर, जिला दरभंगा, बिहार से। ये लिखते हैं कि दिनांक,
ये भी नियमित श्रोता है हमारे, अक्सर यहाँ से लिखते हैं चिट्ठी, मुझे ख्याल आता है।
ये लिखते हैं कि दिनांक 27/11/2019 को रेडियो बीबीसी की संध्याकालीन सभा में प्रसारित कार्यक्रम दुनिया जहां में श्रीलंका की राजनीति पर गहराई से जानकारी दी गई, जो मुझे बहुत पसंद आई। श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति भारत के साथ मधुर संबंध बनाने का उन्होंने संकेत दिया है। श्रीलंका पिछले कुछ वर्षों से चीन के साथ घनिष्ठ होता चला गया था। भारत का पड़ोसी देश चीन, श्रीलंका, नेपाल के साथ मधुर संबंध भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो ये अपनी एक कूटनीतिक जो है टिप्पणी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको दुनिया जहां अच्छा लगा, साथ ही भारत के लिए जो है कितने अहम हैं पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते।
बिल्कुल। और अब चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें, पता वही है, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और आज शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों का घरेलू मैदान पर अपनी टीम का टेस्ट मैच में जीतते हुए देखने का बरसों पुराना सपना पूरा हो गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कराची में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को 263 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली है। पाकिस्तान की जीत के हीरो उसके बल्लेबाज रहे। दूसरी पारी में उसके टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाजों ने शतक जमाए और ऐसा करके उन्होंने भारत के अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 13 साल में अपने घर पर पहली टेस्ट जीत है। उसने इससे पहले 1 दिसंबर 2006 को कराची में ही वेस्ट इंडीज को 199 रनों से हराया था। पाकिस्तान की टीम ने इसके बाद 2008 और 2009 में भी अपने घर में टेस्ट मैच खेले, लेकिन उसे जीत हासिल नहीं हो सकी थी। और अब बात बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग की। गुजरात जायंट्स ने बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग के रोमांचक फाइनल में पंजाब पैंथर्स को हराकर लीग के पहले संस्करण का खिताब अपने नाम किया है। गुजरात जायंट्स ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में खेली गई मैच में पंजाब पैंथर्स को 4-3 से मात दी। पंजाब ने शुरुआती दो मैच जीत बढ़त ले ली थी, लेकिन गुजरात ने इसके बाद दो बार वापसी कर खिताबी जीत अपने नाम की। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और जाते जाते आपको झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों का ताज़ा अपडेट दे दें। अभी तक जो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है, जिस पर आधिकारिक नतीजे बताए जा रहे हैं, उसमें आजसू पार्टी 2 सीटों पर जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर जीत चुकी है और 14 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुई है, कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर जीत चुकी है और 7 पर बढ़त बनाई हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 13 सीटों पर जीत चुकी है और 17 पे बढ़त बनाई हुई है और राष्ट्रीय जनता दल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुई है। और चलते चलते एक बार फिर प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। आज झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी हार गई है और कांग्रेस जेएमएम राजद के गठबंधन को बहुमत मिला है। सऊदी अरब की एक अदालत ने पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के मामले में 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। कुर्द और पश्चिमी खुफिया अधिकारियों ने बीबीसी से कहा कि इस्लामिक स्टेट समूह इराक में फिर से पैर पसार रहा है और जिहादियों के हमले बढ़ने लगे हैं। चीन ने घोषणा की है कि अगले साल की शुरुआत से वो 850 उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर देगा। उम्मीद की जा रही है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैलने के बाद चीन के इस कदम से सुअर के मांस की कीमतें कम हो जाएंगी। रूस के अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद जर्मनी के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को पूरा किया जाएगा। अल्जीरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के सेना प्रमुख अहमद गेत सलाह की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, वो 69 साल के थे। फिलीपींस के प्रशासन ने के मुताबिक अवैध कोकोनट वाइन पीने के बाद 8 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली रविशंकर कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।